زور دیتے ہیں کہ اب وہ مجبوراً اردو اگر سیکھ بھی لی ہے انہوں نے تو اردو کے الفاظ پر اسی طرح زیر زبر پیش ہم لوگ لگاتے ہیں جس طرح عربی کے الفاظ پہ لگاتے ہیں. کہاں اس پڑھیں گے, کہاں اس پڑھیں گے, کہاں اب پڑھیں گے. یہ اس طریقے سے زبان نہ جاننے والوں کے لیے شکلیں بنائی جاتی ہیں, علامتیں بنائی جاتی ہیں, ورنہ زبان کی کیریکٹرسٹک میں شامل ہے. تو نقطوں کا وجود تھا, نقطوں کے بغیر حروف میں امتیاز ممکن نہیں ہے. امتیاز, پہچان. اس لیے یہ اعتراض بالکل ایسا ہے کہ انسان کی, یہ معترض کی بے سوادی یا کم سوادی پہ دلیل ہے, اس کی سند ہے کہ زبان سے آشنا نہیں. اسی طرح اور اعتراضات جو ہوتے ہیں, اعتراضات دراصل بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار آج تک تیرے اولیاء مظلوم ہیں, آج تک دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو علی جیسے حسین پیکر سے خلش رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, علی ابن ابی طالب جیسے کریم شخص, کرم اللہ وجہہ علیہ الصلاۃ والسلام علیہ آلاف التحیت والثناء, علی جیسے کریم, علی جیسے رحیم, علی جیسے رؤوف, علی جیسے عظیم سے اب بھی خلش دلوں میں ایسی ہے کہ ان کے فضائل نہیں سن سکتے, ان کی فضیلت میں روایتوں پہ اعتراضات, ایسے اعتراضات جن کی کوئی علمی اساس نہیں. بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے گزارش کی. اسم سے متعلق جو بحثیں رہ گئی ہیں اس میں ایک بڑی اہم بحث ہے, اور بہت پہلے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اسی ممبر سے یہاں یہ بحث اشارتاً گزارش کی تھی لیکن تشنا رہ گئی تھی, اور آج اس وقت نہیں چاہتا ہے کہ اس بحث کو ذرا سا وضاحت سے بیان کر دوں. یہ جو اسماء ہیں, اللہ, الرحمن, الرحیم اور اسی طرح اور اسماء, بعض, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اللہ نہیں ہے, یہ اسم و اسم اللہ ہے. اسم اللہ یعنی اللہ کا نام, اسم و اسم اللہ یعنی اللہ کے نام کا نام. بحث ہے, ایک پوری پورا مکتب فکر ہے. اس بحث کو وہ مربوط کرتے ہیں اس بحث سے جو اس سے پہلے میں نے گزارش کی, وہ حصہ اپنی جگہ درست ہے لیکن یہ حصہ درست نہیں ہے. اب طالب علمانہ بحث اسی کو تو کہتے ہیں. وہ حصہ جو میں نے عرض کیا کہ اسم اعظم ایک مقام ہے, اسم اعظم صرف لفظ نہیں ہے, اسم اعظم ایک مقام ہے. انسان اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ الفاظ زبان سے جاری کرنے کے نتیجے میں آثار پیدا ہوتے ہیں. وہی پولیس کانسٹیبل اور کمشنر کی مثال یاد رکھیے گا تو بات آسان رہے گی. کہیں بھیڑ اکٹھا ہو اور معمولی سپاہی آ کے کہہ رہا ہو واپس آ گھر جائیے, واپس جائیے, شور نہ کیجیے, کوئی نہیں سنے گا. یہی الفاظ آ کر کمشنر خود کہہ دے وہیں پر, سب سر جھکا کے گھر چلے جائیں گے. الفاظ تو وہی ہیں مگر جب تک سپاہی, معمولی سپاہی کہہ رہا تھا تو کسی نے نہیں سنی, جب کمشنر صاحب نے وہی لفظ اپنی زبان سے کہا تو سب سر جھکا کے चले गए. क्यों? इनके पास मकाम था, उसके पास मकाम नहीं था. ये बहस अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन यहां भी एक तिश्नगी है. अस्मा इलाहिया, जैसे लफ्ज अल्लाह, लफ्ज अल्लाह क्या है? अल्लाह का नाम नहीं है, ये इस्म इस्मिल्लाह है. जो आजाद कहते हैं कि ये अल्फाज खुद इस्मुल्लाह नहीं है बल्कि इस्म इस्मिल्लाह है. क्या कहना चाहते हैं? यानी अल्लाह सुबहान व तआला की जात है और कुछ और वजूदात हैं ऐसे जो इस्मुल्लाह की हैसियत रखते हैं, और ये अल्फाज उन वजूदात के इस्म हैं. ये बहस वाज़िहुल बुतलान है. क्यों? यहां पर जरा सा ठहर कर सब्र और सुकून से सुन लीजिए और हमारे साथ इस बहस को समझने की कोशिश कीजिए. अल्लाह सुबहानहु व तआला की जात और उसके सिफात की तजल्लियां जितने अतवार वजूद हैं हर तौर वजूद में लाजमी है. यानी एग्जिस्टेंस के जितने फेजेज हैं हर फेज में अल्लाह की तजल्ली जरूरी है. अब फेजेस कितने हैं ये अलग एक बहस है. जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी चली आ रही है बहुत कदीम अरिस्टोटल से लेके और अब तक जो क्लासिकल फिलॉसफी चली आ रही है उसमें कहते हैं कि एग्जिस्टेंस के चार फेजेस हैं. अतवार वजूद चार हैं, वजूद लफ्जी, वजूद कतबी, वजूद आइनी या खारिजी और वजूद जहनी. कई बार अर्ज कर चुका हूं, मिसाल भी दे चुका हूं और मिसाल भी जहन में अच्छी तरह होगी. वजूद लफ्जी या मलफूजी जो लफ्ज की शक्ल में आप कह रहे हैं, कतबी जो लिख दिया आपने, जहनी जो जहन में है, खारिजी जो हकीकत में वजूद रखता है. गुलाब, चमन में चले जाइए, दरख्त की शाख पे गुलाब लगा हुआ है, वो है गुलाब का वजूद हकीकी खारिजी. लफ्ज जो आप कह रहे हैं गुलाब, ये उसका वजूद लफ्जी है. लिख दीजिए लफ्ज गुलाब, ये वजूद कतबी है. जहन में जो आपके गुलाब खिला हुआ है वो वजूद जहनी है. समंदर में पानी मौजें मार रहा है, वो पानी का वजूद हकीकी है. लिख दीजिए पानी, वो वजूद कतबी है. बोलिए पानी, वो वजूद लफ्जी है. जहन में जो ठाठे मारता हुआ समंदर है वो वजूद जहनी है. जितने अब ये चार अनहाए वजूद या अतवार वजूद या चार फेजेज हैं एग्जिस्टेंस के, ये चार से ही मुतारफ कराया गया किसी खास मसलहत के तहत, वरना अतवार वजूद या एग्जिस्टेंस के फेजेस जो हैं वो नामुतनाही हैं, चार में मुनहसिर नहीं समझ न समझें आप. ये एक अलग बहस है, हरगिज चार में मुनहसिर नहीं है. आप क्यों तसव्वुर करते हैं कि एक गुलाब जो है वो चमन में है और एक जहन में है और एक लिख दिया गया नाम गुलाब का और एक बोल दिया गया? आपने गुलाब का फोटोग्राफ ले लिया. अब ये जो आपके पास फोटोग्राफ की शक्ल में है ये भी तो एक तौर वजूद है. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. आपने कागज के फूल बनाए, कागज की से बनाई शबीह गुलाब की, ये भी तो एक तौर वजूद है. मोम से आपने गुलाब बनाया और मुख्तलिफ रंगों से रंग दिया, पत्थर से आपने तराश के गुलाब बनाया। जिन लोगों ने ताजमहल जाके करीब से देखा है उन्हें मालूम है कि कैसे कैसे गुल बूटे बने हुए हैं, कैसी पत्तियां, कैसी गुलकारी है, पत्थर से बनाया है सब। वाकयान याकूत ऐसे तराशा है कि जैसे फूल की पंखड़ी हो। ये सब अनहाए वजूद हैं, ये सब फेजेज हैं एग्जिस्टेंस के। ठीक है, इतना तारुफ काफी है इस बहस के लिए। अब मैं कहता हूं कि बहरहाल अगर उसी चार फेजेस पर आप आकर मुनहसर हो जाएं, लफ्जी और कतबी और ऐनी और खारिजी। खारिजी न कहा कीजिए, मुझे तकलीफ होती है, ऐनी कहिए। चली आ रही है ये इस्तिलाह, हालांकि इस्तिलाह से जूझना नहीं चाहिए, लेकिन इस्तिलाह बदली भी तो जा सकती है। ऐनी, वजूद ऐनी, इन्हीं चार को भी आप तस्लीम करें तो ये बात याद रखिएगा कि जितने भी अनहाए वजूद या आतवारे वजूद हैं, जितने भी एग्जिस्टेंस के फेजेज हैं, हर फेज में अल्लाह की जात की तजल्ली होनी चाहिए और इस्म होना चाहिए उसका। अगर कौनियाती एतबार से, तकवीनी एतबार से ऐनी वजूदात खारिज में ऐसे हैं जिनको इस्मुल्लाह कहा जा सकता है, तो लफ्ज के सिंख में भी अल्लाह का नाम होना तो चाहिए। अल्लाह का नाम अगर हम असिंख लफ्ज लेना चाहें तो क्या लफ्ज कहेंगे? अल्लाह इस्मुल्लाह है, न कि इस्मो इस्मिल्लाह। अर रहमान इस्मुल्लाह है, न कि इस्मो इस्मिल्लाह। अर रहीम इस्मुल्लाह है, न कि इस्मो इस्मिल्लाह। ऐसा नहीं कि एक अल्लाह है और एक और वजूद है जो रहीम है। एक अल्लाह है, उसकी जात है, एक जात है और एक और जात है जो रहीम है, और ये लफ्ज रहीम उस जात रहीम का इस्म है और वो जात रहीम अल्लाह का इस्म है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खलते मबहस ना हो जाए। ये मुशाबे है उस बहस के जो लोग सिफात के बाब में कहते हैं कि अल्लाह की जात अलग है, सिफतें अलग अलग हैं, सिफतें जायद बरजात हैं, सिफतें जायद बरजात हैं। एक सिफत है रहमत, उस सिफत से जात हक मुत्तसिफ हुई तो रहीम कहलाई। नहीं, एक सिफत है इल्म, उस सिफत से जात हक मुत्तसिफ हुई तो आलिम और अलीम कहलाई। ऐसा नहीं है। सिफत इल्म जात हक में है, जायद बर जात नहीं है। सिफत कुदरत जात हक में है, जायद बर जात नहीं है। हम हैं मखलूकात, हम जाहिल हैं, हम मां के पेट से जाहिल पैदा होते हैं। हम इल्म हासिल करते हैं तो आलिम बनते हैं। जात हक ऐसी नहीं है, उस जात को इस पर कयास नहीं कर सकते। जिस तरह वहां यह नहीं है कि जात अलग है सिफत अलग है, वैसे यहां नहीं है कि जात अलग है और फिर एक जात है रहीम और यह लफ्ज रहीम उस जात की का इस्म है। लफ्ज रहीम जात हक का नाम है, लफ्ज रहमान जात हक का नाम है, लफ्ज अल्लाह जात हक का नाम है। हां, और हस्तियां जिन्हें हम इस इन अस्मा का मजहर कहते हैं, वो मजहर है इस इस्म का। मजहरियत अलग एक चीज है और मुसम्माइयत अलग एक चीज है। इस्म मुसम्मा चाहता है, यानी आप समझें कि एक तरफ मुसम्मा की जात है और एक तरफ मजहर है और दरमियान में इस्म है। तवज्जो फरमाया आपने, इस्म दरमियान में, मजहर उधर, मुसम्मा इधर। लफ्ज अल्लाह जात हक का इस्म है बिला फसल। ये नहीं कि एक अल्लाह की जात है और फिर कोई और वजूद है जो अल्लाह है, और फिर ये लफ्ज है जो उस इस्म का इस्म है, नहीं वाज़हुल बुतलान है ये बहस, चाहे जितने बड़े मुफस्सिरीन करें, मेरी मजबूरी है, बहुत बड़े बड़े नाम हवाले में आएंगे मेरी सराखों पर, उनका एहतराम अपनी जगह, उनकी इल्मियत अपनी जगह, उनका मर्तबा अपनी जगह, उनका इज्तिहाद अपनी जगह, मगर अगर ये बात बातिल है तो बातिल है, इस तालिब इल्म के नजदीक ये बात बातिल है। ये सब असमा और उसकी, ये तो अकली दलील है, ये मकाम सबूत में है, समझिए।